मैंने पूर्व पाठ के अंत में तीन तरह के हेतु का नाम लिया था, अन्वय व्यतिरेकी हेतु, केवल व्यतिरेकी हेतु और केवल अन्वयी हेतु। तो अन्वय व्यतिरेकी हेतु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा और तीसरा जो है हेतु उसके बारे में आज पढ़ना है। आपकी पुस्तक में देखिए लिखा है कश्चित हेतु केवल व्यतिरेकी, कुछ हेतु जो है ना वह केवल व्यतिरेकी होता है। केवल माने सिर्फ, तो सिर्फ व्यतिरेकी होता है माने वह अन्वयी नहीं होता। एक बार फिर से याद कर लीजिए, व्यतिरेकी हेतु मतलब जहाँ पर व्यतिरेक क्रम से व्याप्ति सिद्ध हो, और अन्वयी हेतु मतलब जहाँ पर अन्वय क्रम से व्याप्ति सिद्ध हो। तो यहाँ पर केवल व्यतिरेकी हेतु की बात हो रही है, जहाँ अर्थात यहाँ पर व्यतिरेकेन व्याप्ति सिद्ध है, अन्वयेन व्याप्ति सिद्ध नहीं है। अब उदाहरण देते हैं, तद्यथा सात्मकत्वे साध्य, माने साध्य सात्मकत्व अगर है तो वहाँ पर हेतु होगा प्राणादिमत्वम हेतु। साध्य और हेतु मैं समझता हूँ कि अब आप समझ चुके हैं, फिर भी जिस वस्तु की सिद्धि करनी है वह साध्य है, तो यहाँ पर सात्मकत्व की सिद्धि करनी है। ये सात्मकत्व क्या है? सौ आत्मकत्व, माने जिसमें आत्मा हो उसको कहते हैं सात्मक। तो सात्मकत्व यदि साध्य है तो उसमें हेतु क्या रखना होगा? प्राणादिमत्वम हेतु, प्राणादिमत्व को जो है ना हेतु के रूप में मानना है। यथा जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, जीवत शरीर जो है, जीवत शरीर मतलब जिंदा शरीर, तो जिंदा शरीर जो है वह सात्मक है माने आत्मा से युक्त है, उसमें हेतु दिया प्राणादिमत्वात् माने प्राणादि संबंध होने के कारण। तो यहाँ पर जीवत शरीरम पक्ष हो गया, सात्मकम साध्य हो गया, और प्राणादिमत्व जो है वह हेतु हो गया। यह जो प्राणादिमत्व हेतु है यह केवल व्यतिरेकी हेतु है। अब उसी को आगे बताएंगे, यथ सात्मकम न भवति, और व्यतिरेकी हेतु में क्या होता है ना, अभाव को बताया जाता है व्याप्ति में, और अन्वयी हेतु में जो है या अन्वय व्याप्ति में जो है भाव को बताया जाता है। चूंकि यह व्यतिरेकी हेतु है इसलिए देखिए अभाव बताया जाएगा। यत सात्मकम न भवति, न भवति मतलब अभाव हुआ ना। चलिए, तो जो सात्मक नहीं होता है माने जो आत्मा से युक्त नहीं होता है, तत् प्राणादिमन न भवति, वह प्राणादि से भी युक्त नहीं होता। यथा घटः, जैसे घड़ा, तो घड़ा जो है वह सात्मक नहीं है माने उसमें आत्मा नहीं रहती है, इसलिए वह प्राणादिमान भी घट जो है वह नहीं होता है। तो न च इदम जीवत शरीरम तथा, यह जो जीवत शरीर है माने यह जो जीवित शरीर है वह तथा नहीं है। तथा नहीं है मतलब प्राणादि अभाव वाला नहीं है। तस्मान न तथा, इसलिए वह तथा नहीं है अर्थात अनात्मक नहीं है, वह जो है सात्मक है। कौन? जीवत शरीर जो है वह सात्मक ही है। यह घट की तरह जो है अनात्मक नहीं है, यह घट की तरह जो है प्राणादि से प्राणादि के अभाव से युक्त नहीं है। अत्र ही जीवत शरीर से सात्मकत्वम साध्यम, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जीवत शरीर पक्ष है और उसका सात्मकत्व जो है वह साध्य है, क्योंकि वही सात्मकत्व अनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। प्राणादिमत्वम हेतु, और प्राणादिमत्व जो है हेतु है। स्वच केवल व्यतिरेकी, और यह जो हेतु है प्राणादिमत्व यह केवल व्यतिरेकी हेतु है। क्यों? तो अन्वय व्याप्ति है अभावात्, क्योंकि अन्वय व्याप्ति का यहाँ पर अभाव है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अन्वय व्याप्ति का अभाव क्यों है, कैसे है? तो आगे बताते हैं, तथा ही यत प्राणादिमत तत् सात्मकम यथा अमुकः इति दृष्टांतो नास्ति, ताकि इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं है जो जिसके कहें पकड़ करके कि यत प्राणादिमत माने जो प्राणादि से युक्त होता है तत् सात्मकम वह सात्मक होता है। यथा अमुकः, जैसे कि फलाना माने जैसे कि कोई किसी का नाम लेकर के, इति दृष्टांतो नास्ति, इस तरह से दृष्टांत नहीं है। और जब दृष्टांत नहीं रहेगा, जहाँ दृष्टांत होगा वहाँ अन्वय व्याप्ति होगी, जहाँ दृष्टांत नहीं होगा, उदाहरण नहीं होगा, वहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं होगी, यही यहाँ पर तात्पर्य है। तो अन्वय व्याप्ति का अभाव है, इसलिए यह केवल व्यतिरेकी हेतु है। अन्वय व्याप्ति का अभाव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दृष्टांत का अभाव है। अब आपके मन में होता होगा कि दृष्टांत क्यों नहीं मिलेगा। यत प्राणादिमत तत् सात्मकम्, माने जो प्राणादि से युक्त होता है वह आत्मा से युक्त होता है, इसमें तो दृष्टांत ही दृष्टांत है। सब लोग तो जितने प्राणी है सब में तो ये चीज है ही, फिर ऐसा क्यों? इसलिए कहा, तो कहा कि इसमें है जिसको भी आप दृष्टांत बनाते वह सब तो पक्ष में की स्थान पर है। जीवत शरीरम सर्वम पक्ष एवं, आप जो है ना दृष्टांत में किसको रखते? जीवित शरीर को ही किसी को रखते ना, चाहे पशु को या पक्षी को या मनुष्य को या किसी को, वह सब तो पक्ष की जगह में है, क्योंकि हमने पक्ष बनाया है ना, जीवत शरीरम सात्मकम। तो दृष्टांत जो होगा ना वो पक्ष से कोई अलग होना चाहिए। तो पक्ष है अपना क्या? जीवत शरीर, माने जितने भी जीवित शरीर वाले प्राणी हैं सब हमारा पक्ष हो गया। अब दृष्टांत कौन होगा? इससे अलग भी कोई अगर मिलता तो दृष्टांत होता ना, तो इससे अलग कौन होगा जिसमें कि आत्मा भी हो और प्राण भी हो? क्योंकि जो जो जिसमें ये चीज है वह सब तो जीवत शरीर पक्ष के अंतर्गत आ ही गया, इसलिए यहाँ दृष्टांत नहीं मिलता है। माने पक्ष के अतिरिक्त अगर उदाहरण हो तो वहीं पर जो है अन्वय व्याप्ति होती है। यहाँ पर जीवत शरीर जो है सभी पक्ष के अंतर्गत, जीवत शरीरम सर्वम पक्ष एवं, पक्ष एवं मतलब पक्षे एवं, तो जीवत शरीर जो है सारा का सारा ये पक्ष में ही समाहित होता है। यहाँ दृष्टांत नहीं मिलता है, इसलिए अन्वय व्याप्ति के अभाव होने से इस हेतु को हम केवल व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। तो यहाँ पर केवल व्यतिरेकी हेतु का उदाहरण दिया प्राणादिमत्व, जहाँ पर की साध्य है सात्मकत्व और पक्ष है जीवत शरीर। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कि लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी हेतु, ताकि कोई कोई लक्षण भी जो है ना वह केवल व्यतिरेकी हेतु वाला लक्षण होता है। ताकि जैसे यथा पृथ्वी लक्षणम गंधवत्वम, पृथ्वी का लक्षण क्या है? तो गंधवत्वम पृथ्वीत्वम, गंधवत्वम माने गंध से संबंध होना, जिसका गंध के साथ संबंध हो, जो गंध संबंधी हो, अथवा कली जो गंधवान हो वह पृथ्वी है। तो जिस पृथ्वी का लक्षण ये है कि जिसमें जिसमें गंध रहता है वह सब पृथ्वी है। तो यह जो लक्षण है गंधवत्वम पृथ्वीत्वम, यह लक्षण भी जो है वह केवल व्यतिरेकी है। आगे कहते हैं विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम गंधवत्वात् यन्न पृथ्वी इति व्यवह्रियते तन्न गंधवद् यथा आपः। अब यहाँ पर ये पंचावयव वाक्य के द्वारा जो है परार्थानुमान को प्रदर्शित किया जा रहा है। कहते हैं कि विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम, यहाँ पर पक्ष जो है वह है विवाद पदम पृथ्वी। विवाद पदम पृथ्वी मतलब पृथ्वी में जो है विवाद है कि पृथ्वी व्यवहर्तव्य है अथवा व्यवहर्तव्य नहीं है। व्यवहर्तव्य मतलब व्यवहार के योग्य, ठीक है? तो व्यवहर्तव्य जो है ना यह साध्य है यहाँ पर, और विवाद पद पृथ्वी जो है यह पक्ष है। तो विवाद पदम पृथ्वी का मतलब समझ गए ना, कि ऐसी पृथ्वी जिसमें कि विवाद हो कि यह व्यवहार के योग्य है अथवा व्यवहार के योग्य नहीं है। आप जानते हैं ना कि पक्ष वही होता है जिसमें कि संदेह जहाँ पर हो, तो संदेह यही होता है ना जिसमें कि भाव का भी प्रमाण न मिले और अभाव का भी प्रमाण न मिले, ऐसी स्थिति में संदेह होता है। और जब संदेह होता है तो वहीं पर विवाद होगा, वहीं विवाद वाला शब्द होगा। तो विवाद पदम पृथ्वी ये हो गया पक्ष। अब इति व्यवहर्तव्यम, ये व्यवहर्तव्यम हो गया साध्य, हेतु हो गया गंधवत्वात् माने गंधवान होने के कारण, गंध से युक्त होने के कारण। यन्न पृथ्वी इति व्यवह्रियते माने जो पृथ्वी पद से जिस न व्यवह्रियते जिसका व्यवहार नहीं होता, जिसका पृथ्वी शब्द से व्यवहार नहीं होता है, तन्न गंधवत वह गंध से युक्त नहीं होता है। यथा आपह जैसे आपह माने जलम, माने जिस तरह से जल। तात्पर्य क्या निकला? कि जिसको जिसको हम पृथ्वी शब्द के द्वारा अभिधान करते हैं, जिसको हम पृथ्वी शब्द से बताते हैं, उन सबों में जो है गंध रहता ही रहता है। जिसको हम पृथ्वी शब्द से नहीं बताते हैं उसमें गंध नहीं होता है, यथा आपह जैसे जल। तो यहाँ जो ये पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्व, यह लक्षण भी जो है ना, यह केवल व्यतिरेकी लक्षण है, और इसका हेतु जो है, यह जब हेतु रूप में लक्षण रहता है तो यह केवल व्यतिरेकी हेतु है। तो लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी हेतु, इस ये जो केवल व्यतिरेकी है उसको दोनों में अन्वय करिए, माने लक्षणम अपि केवल व्यतिरेकी, हेतु अपि केवल व्यतिरेकी, माने कुछ जो लक्षण है वह केवल व्यतिरेकी हेतु के रूप में होता है। तो उदाहरण दिया जाता था पृथ्वी लक्षणम गंधवत्वम, ठीक है, और इसको पंचावय वाक्य में बताया विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहार तव्यम, माने विवाद पद जो पृथ्वी है इस पृथ्वी शब्द से व्यवहार किया जाना चाहिए, व्यवहार तव्य माने व्यवहार किया जाना चाहिए, क्यों, गंधवत्वात, गंध से युक्त होने के कारण। अब यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति बता रहे हैं, यन्नो पृथ्वी इति व्यवह्रियते, जो पृथ्वी शब्द से व्यवहित नहीं होता, तन्नो गंधवत, वह गंध से युक्त नहीं होता, यथा आपह। ऐसे ही अब एक दूसरा भी उदाहरण देते हैं केवल व्यतिरेकी लक्षण वाला, प्रमा लक्षणम वा यथा प्रमाकरणत्वम, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रमाण का लक्षण क्या होता है, तो प्रमाकरणम प्रमाणम, इसमें लक्षण क्या हुआ, प्रमाकरणत्व जो है वह लक्षण हुआ। तथा ही अब इसको भी पंचावयव वाक्य में बताएंगे, प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम, माने प्रत्यक्ष आदि, आदि माने अनुमान उपमान शब्द, ये चार प्रमाण होते हैं ना, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो है इति व्यवहर्तव्यम, माने यह व्यवहार के योग्य है, या इसका व्यवहार माने प्रत्यक्षादि को प्रमाण शब्द से व्यवहार करना चाहिए, क्यों, प्रमाकरणत्वात्, प्रमा के करण होने से, यत प्रमाणम इति न व्यवह्रियते, जिसको प्रमाण शब्द से व्यवहार नहीं किया जाता है, तन्नो प्रमाकरणम, वह प्रमाकरण नहीं होता है, यथा प्रत्यक्षाभास आदि, जैसे प्रत्यक्षाभास आदि, तो प्रत्यक्ष का आभास हो, माने जो प्रत्यक्ष हो नहीं लेकिन उसका आभास हो, इसको कहेंगे प्रत्यक्षाभास। और आदि, आदि से जो है ना हम अनुमानाभास को ले लेंगे, तो प्रत्यक्षाभास, अनुमानाभास, ये सब जो हैं ये प्रत्यक्ष आदि शब्द से व्यवहारणीय नहीं होते हैं। तो यथा प्रत्यक्षाभास आदि, न पुनस्तथा इदम, और ये जो है प्रमा, ये प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम जो है, न पुनस्तथा माने यह वैसा नहीं है, कैसा, प्रत्यक्षाभास आदि की तरह नहीं है, तस्मान न तथा, इसीलिए यह प्रत्यक्षाभास आदि की तरह जो है अव्यवहर्तव्य नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्षादि जो है यह व्यवहर्तव्य है। न पुनः अत्र यत् प्रमाकरणम तत् प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम यथा अमुकः इति अन्वय दृष्टांत अस्ति। ये बात आप जान चुके हैं कि अन्वय दृष्टांत जहाँ नहीं होता वहीं पर जो है व्यतिरेकी हेतु माना जाता है, या व्यतिरेकी व्याप्ति बताई जाती है। तो यहाँ भी अन्वय दृष्टांत नहीं है, वही कहने के, न पुनः अत्र माने यहाँ पर ऐसा कोई, यत् प्रमाकरणम तत् प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम, न पुनः अत्र यत् प्रमाकरणम तत् प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम यथा अमुका, माने जितने भी प्रमाण शब्द से व्यवहारणीय है वह सब तो यहाँ पर पक्ष में आ गए, प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम में कोई ऐसा बचा क्या, सब तो इसी में आ गया, पक्ष में ही आ गया, तो पक्ष से अलावे कोई बचा ही नहीं जिसको कि दृष्टांत रूप में प्रयुक्त किया जाए, वही कहता है न पुनः अत्र यत् प्रमाकरणम तत् प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम यथा अमुका, ऐसा कोई नहीं है जिसको हम कहें कि यह जो है प्रमाकरण प्रमाण है, प्रमाण शब्द से यह व्यवहारणीय है, जैसा कि यह, इस तरह से अन्वय दृष्टांत नहीं है, क्योंकि जो अन्वय दृष्टांत बनता वह सब तो पक्ष के अंतर आ गया है, वही कहा प्रमाण मात्रस्य पक्षीकृतत्वात्, जितने भी प्रमाण हैं माने जितने भी प्रमा के कारण हैं वह सब तो पक्षीकृत हैं, माने उसको तो पक्ष बना लिया गया है, इसलिए वह दृष्टांत बन नहीं सकता, और जब दृष्टांत नहीं बनेगा तो वहाँ पर अन्वयी हेतु नहीं हो सकता, वहाँ पर केवल व्यतिरेकी हेतु ही होगा। अत्र च व्यवहार साध्य, अब यहाँ पर जो ये जो बताया ना प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम प्रमाकरणत्वात्, इसमें बता रहे हैं कि साध्य क्या है, कहते हैं कि अत्र च व्यवहार साध्य, यहाँ जो व्यवहारतव्यम कहा ना, तो व्यवहार जो है यहाँ पर साध्य है, न तो प्रमाणत्व, प्रमाणत्व यहाँ पर साध्य नहीं है, प्रमाणत्व तो पक्ष के अंतर्गत आया। तस्य प्रमाकरणत्वात् हेतु अभेदेन साध्याभेद दोष प्रसंगात्, ताकि यदि आप प्रमाणत्व को साध्य मानेंगे तो क्या होगा, हेतु में आपने किसको पकड़ के रखा है, प्रमाकरणत्वात् हेतु बोला है ना, तो प्रमाकरण और प्रमाण तो एक ही चीज है, तो फिर क्या होगा, अगर प्रमाण को आप साध्य मानेंगे और हेतु जो है प्रमाकरण है, तो दोनों में अभेद हो गया ना, दोनों तो एक ही बात हो गई, जबकि नियम ये है कि साध्य और हेतु में भेद होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर व्यवहार को साध्य मानना जानना है, प्रमाणत्व को साध्य नहीं मानना है। अगर प्रमाणत्व को साध्य मानेंगे तो प्रमाकरणत्व रूप जो हेतु है उसके साथ अभेद हो जाएगा साध्य का, फिर वह दोष प्रसंगात फिर दोष होने लगेगा। तदेवम केवल व्यतिरेकिनो दर्शिता, इस तरह से यहाँ पर केवल व्यतिरेकी जो हेतु है दर्शिता वह आपको बताया गया। तो यहाँ पर केवल व्यतिरेकी में अगर देखें तो तीन तरह का बताया गया, एक तो बताया गया कि जीवत शरीरम सात्मकत्वम प्राणादिमत्वात्, इसमें जीवत शरीर पक्ष था, सात्मकत्व साध्य था और प्राणादिमत्व जो है वह हेतु था। दूसरा बताया विवाद पदम पृथ्वी इति व्यवहर्तव्यम गंधवत्वात्, यहाँ पर पक्ष था विवाद पदम पृथ्वी, पदम माने शब्द, तो विवाद पदम पृथ्वी पक्ष था, व्यवहर्तव्य माने व्यवहार, यह जो है साध्य था और गंधवत्व जो है वह हेतु था। तीसरा बताया प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम प्रमाकरणत्वात्, इसमें प्रत्यक्षादिकम प्रमाणम जो है यह पक्ष था, व्यवहर्तव्य माने व्यवहार जो है वह साध्य था, आ प्रमाकरणत्व जो था वह हेतु था। और इस तरह से ये तीनों जो हेतु हैं, ये तीनों हेतु केवल व्यतिरेकी हेतु हैं, क्योंकि जो भी दृष्टांत हो सकते थे वो सब के सब पक्ष के अंतर्गत ही आ गए, उसके अलावा कोई बचा ही नहीं, तो अन्वय दृष्टांत नहीं मिलने के कारण ये सब केवल व्यतिरेकी हेतु कहलाते हैं। अब तीसरा जो हेतु का भेद है वह है केवलान्वयी हेतु। केवलान्वयी हेतु में जो है ना, वह अन्वयन व्याप्ति तो रहती है, व्यतिरेकेन व्याप्ति नहीं रहती है, इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।